एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
Jesus power, super power. चमकता तारा यीशु, जग में सबसे प्यारा यीशु है। चमकता तारा यीशु, जग में सबसे प्यारा यीशु। उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तू स्वीकार कर। इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें तेरे वचन से आशीषित कर, विशेषकर मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो पिता, जो तेरे वचनों को सुन रहे हैं उन्हें सुनकर तेरा आशीष मिले। और विशेषकर मेरे संग हो पिता, जब मैं तेरा वचन को बतलाता हूँ मुझे बुद्धि दे और मुझे तेरा पवित्र आत्मा का अगुवाई और सामर्थ्य दे, ताकि मैं तेरा महिमा के लिए तेरा वचन प्रस्तुत कर सकूं और वह सबके लिए आशीष का कारण बने। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का संवाद का शीर्षक है पिलातुस के न्याय कक्ष में। रोमी गवर्नर पिलातुस के न्याय कक्ष में एक कैदी के रूप में बंधा हुआ यीशु खड़ा था। सैनिकों ने उसे घेर रखा था और न्यायालय में तमाशा देखने वालों की भीड़ बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी। प्रवेश द्वार के बाहर महासभा के न्यायाधीश, याजक, पुरनिये और दूसरे लोगों की भीड़ थी। यीशु पर दोष लगाने के बाद महासभा के सलाहकार लोग पिलातुस के पास आए कि उनके द्वारा ठहराए गए दंड पर अपनी सहमति की छाप लगा दे। परंतु ये यहूदी अधिकारी लोग रोमी अदालत के भीतर नहीं गए। उनकी विधि के अनुसार यदि वे वहां जाएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे और फसा पर्व की विधियों में भाग नहीं ले सकेंगे। अपने अंधेपन में उन्होंने यह नहीं देखा कि वे घृणित हथियारे अपने हृदयों को अपवित्र कर चुके हैं। वे यह नहीं देख सके कि मसीह ही प्रायश्चित का वह वास्तविक मेमना है, और क्योंकि उन्होंने उसे रद्द कर दिया है इसलिए उस महान पर्व का उनके लिए कोई अर्थ ही नहीं रहा। जब मुक्तिदाता को न्याय कक्ष में लाया गया तो पिलातुस ने उसे मित्रवत आंखों से देखा। रोमी गवर्नर को उसके शयन कक्ष से जल्दी में बुलाया गया था। उसने अपने मन में सोच लिया था कि जितनी जल्दी संभव हो सकेगा वह अपना काम समाप्त कर देगा। वह तैयार था कि कैदी के विरुद्ध कठोर न्यायाधीश का व्यवहार करेगा। अपनी कठोरता के विचारों के साथ उसने पलट कर उस कैदी को देखना चाहा जिसका निरीक्षण करने के लिए उसे इस घड़ी बुलाया गया था। वह जानता था कि वह कोई ऐसा मुजरिम होगा जिसे यहूदी अधिकारी लोग जल्दी से जल्दी दंडित करने के लिए उतावले होंगे। पिलातुस ने पहले उन लोगों को देखा जो यीशु को पकड़ कर लाए थे और फिर अपनी खोजी नजरों से यीशु को घूरने लगा। उसका पाला हर प्रकार के अपराधियों के साथ पड़ चुका था। परंतु आज से पहले कभी भी किसी ऐसी भोली भाली सूरत वाले व्यक्ति को उसके सामने नहीं लाया गया था। उसने उसके चेहरे पर किसी अपराध करने का चिन्ह नहीं देखा, ना तो वह भयभीत था, ना ही बहादुरी का और ना ही अपना बचाव करने की कोई उत्सुकता उसमें नजर आ रही थी। उसने देखा कि यह मनुष्य शांत और सुशील है, उसके चेहरे से किसी अपराधी होने का नहीं बल्कि ईश्वरीय होने के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यीशु का रूप और स्वभाव देखकर पिलातुस का मन उसका पक्षधर हो गया था। उसकी भलमानसहत की प्रकृति जाग उठी थी। उसने यीशु और उसके काम के बारे में सुन रखा था। उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि एक गलीली भविष्यवक्ता कैसे कैसे आश्चर्य के काम किए हैं। उसने बीमारों को चंगा और मुर्दों को भी जिला दिया है। एक बीते हुए सपने की तरह ये सभी बातें पिलातुस के मन में उभरने लगी। कई स्रोतों से जो अफवाहें सुन रखा था उन्हें भी याद करने लगा। उसने फैसला कर लिया कि इस कैदी के विरुद्ध क्या आरोप लगाया गया है वह यहूदियों से पूछेगा। पिलातुस ने पूछा, यह कौन मनुष्य है और इसे यहाँ क्यों लाए हो, उसके विरुद्ध क्या आरोप है? यहूदी लोग इन प्रश्नों से संतुष्ट नहीं थे। वे जानते थे कि मसीह के विरुद्ध कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने चाहा कि सामान्य जनता के सामने उससे कोई पूछताछ ना की जाए। उन्होंने जवाब दिया कि वह यीशु नाजरी है, जो एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। पिलातुस ने फिर पूछा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की नालिश करते हो? याजकों ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उसकी बातों से सिज्झ कर उन्होंने कहा, यदि वह कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सौंपते। याजकों ने सोचा कि डामाडोल और कमजोर पिलातुस के साथ बिना किसी परेशानी के वे लोग अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जल्दबाजी में उसने उन लोगों के मृत्युदंड के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया था जो अपने आप को बेगुनाह कहते थे। उसके हिसाब से कैदी का जीवन, चाहे वह दोषी हो या ना हो, कोई विशेष महत्व नहीं रखता था। याजकों को आशा थी कि पिलातुस बिना कुछ और सुने अब यीशु के मृत्युदंड की मंजूरी दे देगा। इस सफलता को उन्होंने अपने महान फसह पर्व की विजय समझा, परंतु उस कैदी में कोई ऐसी बात थी जो पिलातुस को ऐसा करने से रोक रही थी। उसको ऐसा करने का साहस नहीं हुआ। उसने याजकों के उद्देश्यों को पढ़ लिया था। उसने याद किया कि बहुत समय नहीं हुआ है जब यीशु ने लाजर को, जो चार दिन का मरा हुआ था, उसे जिला दिया था। उसने फैसला कर लिया कि वह मृत्युदंड के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले यह जानना चाहेगा कि उसके विरुद्ध क्या दोष लगाया गया है और क्या वे दोष प्रमाणित किए जा सकते हैं। पिलातुस ने कहा कि यदि आप लोगों का न्याय सही है तो फिर कैदी को मेरे पास क्यों लाए हो? तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। अब स्वयं पर दबाव पड़ने से याजकों ने कहा कि हम लोगों ने तो पहले ही से दंड निर्धारित कर लिया है, केवल इस दंड पत्र पर पिलातुस के हस्ताक्षर चाहते हैं। पिलातुस ने पूछा, आप लोगों ने क्या दंड निर्धारित किया है? उन्होंने उत्तर दिया कि मृत्युदंड, परंतु यह हमारे विधि के अनुसार सही नहीं है कि हम किसी को मृत्यु दंड दें। उन्होंने पिलातुस को विश्वास दिलाना चाहा कि मसीह के विरुद्ध हम जो कुछ आरोप लगा रहे हैं उन्हें तो वैसा ही मान ले और उनके किए हुए फैसले को मंजूरी दे दे। उसका जो भी परिणाम होगा वह सब हमारे सिर पर होगा। पिलातुस कोई निष्पक्ष न्याय करने वाला या धर्मात्मा नहीं था, परंतु यद्यपि नैतिक शक्ति में वह कमजोर था, फिर भी मंजूरी देने से इनकार कर दिया। वह तब तक यीशु को दोषी नहीं ठहराएगा जब तक उसके विरोध लगाए गए दोष नहीं बताए जाते। याजक लोग संकट में फंस गए थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने ढोंग को मोटी चादर के नीचे छिपाकर गुप्त रखना है, किसी भी रूप में यह नहीं जाहिर होने देना है कि यीशु को धार्मिक कारणों से कैद किया गया है। यदि यह बात कारण बनती है तो पिलातुस की नजर में उसका कोई महत्व नहीं होगा। उन्हें ऐसा कुछ पेश करना है कि यीशु देश के सामान्य कानूनों के विरुद्ध कार्य कर रहा था, जो उसे राजनीतिक अपराध मानकर दंडित किया जाएगा। यहूदियों में रोमी शासन के विरुद्ध में उपद्रव और राजद्रोह जैसी बातें पहले से ही हो रही थी। रोमी लोगों ने बड़ी कठोरता से उसे दबा दिया था और लगातार इस ताक में रहते थे कि जहां कहीं भी ऐसा होने की आशंका हो, कठोरता से उसे कुचल दिया जाए। इस घटना से थोड़े दिन पहले फरीसियों ने इस प्रश्न में यीशु को फंसाना चाहा था कि क्या हमें कैसर को कर देना उचित है कि नहीं, परंतु मसीह ने उनके पाखंड का पर्दाफाश कर दिया था। जो रोमी लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने देख लिया था कि किस प्रकार से षड्यंत्रकारी लोग असफल हो गए थे और उसके उत्तर से पराजित हो गए थे कि जो कैसर का है वह कैसर को दो, यीशु ने कहा था। यह लिखा हुआ है लुका 20 का 22 से 25। अब याजकों ने सोचा कि ऐसा जाहिर होने दे कि जैसी उन्हें उम्मीद थी वैसे ही मसीह ने सिखाया था। अपनी सीमा से बाहर जाकर उन्होंने अपनी मदद के लिए झूठे गवाह तैयार कर लिए और यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। बिना किसी आधार के उस पर 3 आरोप लगाए गए। याजकों को यह मालूम था, परंतु उन्होंने ठान लिया था कि अपनी योजना को सफल बनाने के लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। पिलातुस उनके उद्देश्य को समझ गया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैदी रोमी सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सकता है। उसका विनम्र और साधारण स्वभाव ऐसे आरोप के साथ मेल नहीं खाता है। पिलातुस को विश्वास हो गया कि इस भोले भाले मनुष्य को मिटा देने के लिए कोई गहरी चाल चली जा रही है, जो कि यहूदी अधिकारियों के मार्ग में रुकावट बन रहा था। यीशु की ओर देखकर पिलातुस ने पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? मुक्तिदाता ने उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। और जब उसने ऐसा कहा तो उसका चेहरा सूरज की किरण जैसा चमक उठा था। जब उन्होंने उसका उत्तर सुना तो कैफा और जो लोग उसके साथ थे, उन्होंने पिलातुस से कहा, तू इस बात का गवाह है कि जो आरोप उसके विरुद्ध लगाए गए हैं वह खुद ही उस अपराध को स्वीकार कर रहा है। याजक, शास्त्री और अधिकारी सभी लोग जोर जोर से कहने लगे कि उसे मृत्युदंड दिया जाए। इस चिल्लाहट में सारी भीड़ भी अपना स्वर मिलाने लगी और उसका स्वर कानों को बहरा कर दे रहा था। पिलातुस उलझन में पड़ गया। उसने देखा कि यीशु अपने ऊपर आरोप लगाने वालों को कोई उत्तर नहीं दे रहा है, तो पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। पिलातुस की ओर पीठ किए खड़े हुए ताकि सभी लोग उसे देख सके, मसीह ने पूरी भीड़ की चिल्लाहट और बुरी बुरी बातों को सुना, परंतु जितने भी झूठे आरोप उस पर लगाए जा रहे थे उसने उनके उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी सहनशीलता ही उसके निर्दोष होने की गवाही दे रही थी। वह चुपचाप खड़ा रहा, परंतु उसकी चुप्पी का व्याख्याता की खामोशी जैसी थी। ऐसा लगता था कि उसके भीतर से एक ज्योति निकलकर बाहर मनुष्यता पर चमक रही है। उसकी सहनशीलता को देखकर पिलातुस चकित रह गया था। उससे सच्चाई को जानने की आशा और उपद्रवी भीड़ से बचने के लिए पिलातुस यीशु को अपने साथ एक किनारे ले गया और फिर पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने इस प्रश्न का सीधे उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि पवित्र आत्मा पिलातुस के साथ काम कर रहा है और उसने उसे एक अवसर दिया है कि वह अपने विश्वास को स्वीकार करे। उसने कहा, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? इसका मतलब यह है कि क्या यह याजकों द्वारा लगाया गया आरोप था या मसीह से प्रकाश पाने की आशा में यह प्रश्न पूछा गया था? पिलातुस मसीह की बात को समझ गया, परंतु उसके हृदय में घमंड उत्पन्न हो गया था। जिस विश्वास का उसके मन पर दबाव पड़ रहा था वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा, तूने क्या किया है? पिलातुस के हाथ से सुनहरा अवसर निकल गया था। मसीह ने कहा, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस की इच्छा थी कि वह सच्चाई को जाने। उसने पूछा, सत्य क्या है? यहूदियों के पास बाहर जाकर पिलातुस ने निश्चित शब्दों में घोषित कर दिया कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। वह अपने ऊपर कोई दोष लेने नहीं चाह रहा था पिलातुस। इसीलिए यीशु को उस समय हेरोदेस के पास भेज दिया, जो उस समय वह भी यरूशलेम में था, कि वह जांच पड़ताल करके यीशु पर अपना न्याय सुनाए। पर हेरोदेस के पास जब यीशु को ले जाया गया, हेरोदेस भी कुछ दोष नहीं पाया यीशु मसीह में। हेरोदेस उससे कुछ चमत्कार देखना चाहता था, क्योंकि वह सुना था कि यीशु मसीह बहुत चमत्कार किया था। परंतु उस समय यीशु मसीह उसके सामने कुछ चमत्कार नहीं किया, क्योंकि वह जानता था हेरोदेस के हृदय को, और वहां चमत्कार देखने की दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। और हेरोदेस उसे वापस पिलातुस के पास भेज दिया। कुछ दोष वह भी नहीं यीशु में पाया था। पिलातुस बहुत चिढ़ गया था और बेसहाय था। यीशु को छोड़ना चाहता था, परंतु याजकों और लोगों की भीड़ का चिल्लाहट बहुत जोर से उसके ऊपर दबाव डाल रही थी। फिर वह सोचा, क्या करेगा? तो उस समय उसे याद आया कि उस पर्व के समय वह एक बंदी को, एक गुनाहगार को छोड़ता है उनके कहने के अनुसार। तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या वह यहूदियों के राजा यीशु को छोड़ दे या बरअब्बा को छोड़ दे, जो बहुत बड़ा गुनाहगार था, एक डाकू था और हत्यारा था। पर लोग चिल्लाकर कहते हैं उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दे। तब पिलातुस कहता है, तो मैं इसे यीशु को, जो यहूदियों का राजा कहलाता है, क्या करूं? लोगों को यह प्रश्न पिलातुस ने कहा, लेकिन लोगों ने कहा कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। लोगों का दबाव बहुत ज्यादा था, याजकों का, लोगों का आवाज और दबाव बहुत ज्यादा था। पिलातुस उसको नहीं सह सका और अपना पद का वह ख्याल कर रहा था और पद को वह उसको नहीं छोड़ना चाहता था, वो अपना पद को नहीं खोना चाहता था। इसलिए वह अंत में यीशु मसीह को उनके हाथों में सौंप दिया। यीशु को कोड़ा मरवाया अपने रोमी सिपाहियों से और अपना हाथ धो करके यीशु को उनके हाथों में दे दिया कि वे लोग ले जाएं अपने आप और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दे, जिस तरह की वे लोग मांग किए थे। परंतु वह अपने आप को, पिलातुस अपने आप को निर्दोष दिखलाने चाहता था, और उन्होंने उनके सामने कटोरा में अपना हाथ धोया, कटोरा का पानी से अपना हाथ धोया। भाइयों और बहनों, इस दृष्टांत में हम पाते हैं कि पिलातुस यीशु मसीह को पहचान रहा था, लेकिन अपना घमंड, अपना पद के कारण उसको नहीं अपनाया और लोगों के हाथों में सौंप दिया कि वे उन्हें क्रूस पर चढ़ाए। परंतु यीशु मसीह मरा और उसके जगह में बरअब्बा छुड़ाया गया। उसी तरह आप और हम सबको बचाने के लिए यीशु मसीह अपना जान का बलिदान दिया। हम सभी पापियों के लिए यीशु मसीह अपना बलिदान दिया। और आज यदि हम यीशु मसीह को पहचानते हैं, उसको अपनाते हैं, तो हमें मुक्ति मिलेगी, हमारे पापों का क्षमा होगा और हमें उधार मिलेगी। आइए हम यीशु मसीह के पास उसे स्वीकार करें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और कहें कि हमें स्वीकार करें और हमारे पापों को क्षमा करें यीशु मसीह के जीवन के द्वारा और हमें नया जीवन दे और वह हमें उद्धार करेगा। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और आपको भी बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए पिता, कि प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम किया, हमारे लिए वह आया इस पृथ्वी पर, वह दुख सहा और हमारे बदले में मरने के लिए वह तैयार था, कि हम यदि उसमें विश्वास करते हैं हम अपने पापों से बचाए जा सकते हैं। हम पश्चाताप करके तेरे पास आना चाहते हैं पिता, हमें तेरे पवित्र आत्मा का मदद कर और हम सबों को आशीष दे और तेरे नज़दीक ला और तेरे राज में बचा पिता परमेश्वर। मेरे हरेक श्रोताओं के संग उन्हें आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन।
यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@advent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।